नियमसार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 73। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयलियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, नमीऊनजिनं वीरं अनन्तवर्णानदं सनसहावम्। वोच्चामि नियमसारं केवली सुद केवली वनिदम्।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभु मल्लधारी देव जी ने टीका लिखी है तात्पर्य वृत्ति नाम की, और पूज्य श्री गुरुदेव श्री जी के प्रवचन हुए कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से उसमें हम दूसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं और पृष्ठ संख्या है 8। यहाँ नया पैराग्राफ है, वहां से हम शुरू करते हैं। अहियाँ तो पर्यायना आश्रय थी कल्याण थशे एम पण नथी। पहली बात आई थी ना, ये तत्वों की बात चले, जीवादि बहिस्तत्वों की बात यहाँ चल रही है। उसको जीवादि 7 तत्वों के समूह को परद्रव्य कहा और समस्त है ये ऐसा कहा था। तो यहाँ तो कहते हैं, यहाँ तो पर्यायना आश्रय थी कल्याण तसे एम पण नथी, यानी जो संवर निजरा और मोक्ष जो शुद्ध पर्याय है, एक देश शुद्ध और पूर्ण शुद्ध, उसके भी आश्रय से कल्याण नहीं होगा ये कहते हैं। क्योंकि पर्याय में ही ये जो कार्य हो रहा है, परंतु वो स्वभाव के सन्मुख वाले पर्याय में ये कार्य, स्वयं वो पर्याय जो नहीं उत्पन्न होने वाली है तो वो शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, परंतु वो द्रव्य के आश्रय से होती है, उसके अवलंबन से, उसमें एकाग्र होने से होती है। हाँ, 8 नंबर के पृष्ठ पर बात चल रही है, तीसरी लाइन से हमने पढ़ना शुरू किया अभी। अहियाँ तो पर्यायना आश्रय थी कल्याण थशे एम पण नथी। संवर निर्जरा पर्याय छे तो कल्याण रूप, यानी वो पर्याय स्वयं कल्याण स्वरूप है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग ए छे तो त्रणे कल्याण रूप, अने श्रावक ने तो ए त्रणे कह्या छे। सम्य दृष्टि श्रावक छे, एने पण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण कह्यु छे। आ नियमसार मां भक्ति अधिकार मां दर्शन ज्ञान चारित्र त्रणे कह्यु छे, पण एना पहला दर्शन शुद्धि परिमाना 11 बोल छे ने, एनी 11 प्रतिमा जो है एमां दर्शन शुद्धि पहलो बोल, तो ए दर्शन शुद्धि ए चौथा गुणस्थानी वात नथी, पांचमा गुणस्थानी वात छे। दर्शन शुद्धि व्रत एवी 11 परिमा छे ने, तो ए दर्शन शुद्धि चौथा गुणस्थानी वात नथी, 11 परिमामां पहली परिमा छे। छे तो पंचम गुणस्थानी वात, पण व्रत निरतिचार नथी, ए कारणे व्रत प्रतिमा परिमा नथी कह्या। इन्हें यहाँ क्या कहते हैं, चौथे गुणस्थान में दर्शन विशुद्धि या दर्शन शुद्धि क्यों नहीं कही, दर्शन प्रतिमा क्यों नहीं कही, वहां भी सम्यक दर्शन है। हाँ, वो बात नहीं है, व्रत तो वहां पर है, जिसको दर्शन प्रतिमा है उसको तो व्रत है, तो उसको व्रत प्रतिमा क्यों नहीं कही, समझ में आती है ना बात। व्रत तो उसके भी है और फिर भी उसको केवल दर्शन प्रतिमा कही, समय दर्शन है। हाँ, ये बात है, चौथे गुणस्थान में अतिचार हो सकते हैं, और पांचवे गुणस्थान वाले को दर्शन प्रतिमा जो कही वो अतिचार रहित समय दर्शन है, इसलिए वहां प्रतिमा कही। अब दर्शन प्रतिमा वाले को व्रत है, अनुव्रत तो उसके भी हो गए, परंतु वह अतिचार रहित नहीं है, प्रतिज्ञा पूर्वक उसके भी है, उसके भी है, परंतु जहाँ अतिचार होते वो दोष टालने का प्रयत्न भले कर रहा है परंतु वहां लग सकते हैं। ऐसा दोष नहीं है कि उसके वो भंग हो जाए उसका, यानी उसमें से छूटता नहीं है, वो पंचम गुणस्थान उसका छूटता नहीं, सम्यक तो छूट रहा है। चौथे में सम्यक तो है, अतिचार वहां हो सकते हैं, यानी होते रहते हैं कभी कभी। प्रायश्चित तो सब अंतरंग में स्थिरता से वो सब मुख्य है, वो केवल बोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, यहाँ यही कह रहे हैं कि जो आगे आगे वाली प्रतिमा है वो भले अभी जो व्रत प्रतिमा है वो सामयिक भी करेगा, परंतु उसके वो प्रतिमा नहीं कहते, उसको प्रोषित की प्रतिमा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? जहाँ वो अतिचार रहित होकर करता है वहां पर उसको नाम दिया जाता है, ये उसका मूल कारण। ये फिर अभी यहाँ बताया, देखो ये परिमाण अग्यार बोल छे ने, वहां से पढ़ती हूँ। एमा दर्शन शुद्धि पहलो बोल, तो ये दर्शन शुद्धि चौथा गुणस्थान नी वात नथी, पांचमा गुणस्थान नी वात छे। दर्शन शुद्धि व्रत एवी अग्यार परिमा छे ने, तो ये दर्शन शुद्धि चौथा गुणस्थान नी वात नथी। अग्यार परिमा मा पहली परिमा छे, छे तो पंचम गुणस्थान नी वात, पण व्रत निरतिचार नथी ए कारणे व्रत परिमा नथी कया। यानी जहाँ दर्शन प्रतिमा कही वहां व्रत प्रतिमा क्यों नहीं कही? वहां भी व्रत होते हैं परंतु वो निरतिचार नहीं है, इसलिए वहां वो प्रतिमा नहीं कही, ये कह रहा है। मारे तो बीजू कहूं छे, ए दर्शन परिमा वाला ने पण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र त्रणे कहूं छे। आ पाछळ अधिकार छे ने, भक्ति नो अधिकार छे, भक्ति भक्ति आ लेव भक्ति अधिकार आव्यो हो, भक्ति आ तो हिंदी छे ने, अमारा गुजराती में बधु लख्यू छे। जुओ पहली गाथा 134 छे, हिंदी प्रतमा 269 पाणु छे। जुओ वो मूल नियम सार में होगा ये ना, आगे चलकर आने वाला है वो। टू सिक्स नाइन हिंदी में, परम भक्ति अधिकार है, परम भक्ति गाथा 134 बराबर है, गाथा 134 में छे। यानी वो बताया है जो श्रावक अथवा श्रमण सम्य दर्शन सम्य ज्ञान और सम्य चारित्र की भक्ति करता है उसे निवृत्ति भक्ति ऐसा जिन्होंने कहा है। अभी उसकी बात विस्तार से वहां होगी। तो सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र की भक्ति ऐसा शब्द आया वहां पर, ये बात यहाँ बता रहे हैं। रत्नत्रयनी भक्ति करे छे, देखो यहाँ लिखा है, ते परम श्रावको अने परम तपोधनों ने, तपोधने ने मुनिराज जिनवरोए कहेली निर्वाण भक्ति एमा चारित्र लीधु छे। समझाणु? क्योंकि एक देश चारित्र और पूर्ण चारित्र इस तरह से शुद्ध रत्नत्रयनी भक्ति करे छे, एमा छे शुद्ध रत्नत्रय। पंचम गुणस्थान वाला ने रत्नत्रय कहूं, पहली गाथा 134 यानी वो भक्ति अधिकार, वो दसवां अधिकार है, अभी हमारा तीसरा शुरू है। टीका छे पाछळ चारित्र कहूं छे, पण ए अहीं नथी लीधू, ए चारित्र पंचम गुणस्थान में पण कहूं छे। मारे एम कहूं छे, शू कहूं? कोई एम कहे के श्रावक ने चारित्र नथी होतू, श्रावक ने मात्र दर्शन ने ज्ञान ज होय छे। सम्य दृष्टि श्रावक छे अने पंचम गुणस्थान में छे तेने अहीं पाठ जो, पाठ मूल पाठ कुणई सावगो समणो, गाथा छे सम्मत नान चरणे जो भक्ति कुणई सावगो समणो तस्सदु निवृत्ति भक्ति। श्रावक पण सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र त्रण नी भक्ति एटले परिणमन करे छे। यहाँ भक्ति परिणमन को कहा, भक्ति एटले विकल्प नहीं, ये गाकर वो भक्ति करना अर्घ्य उतारना वो भक्ति की बात नहीं। यहाँ पर उस रूप परिणाम ना ये भक्ति है, वो बात आती ना नमस्कार में भी वो बात आती है। भक्ति एटले विकल्प नहीं, समझाणु काय? 134 में गाथा छे कुणई सावगो समणो सम्मत नान चरणे जो भक्ति कुणई सावगो समणो। श्रावक ने पण समय दर्शन ज्ञान चारित्र ने परिणती छे, ये भक्ति छे। उसके उसके चारित्र नहीं होता, चारित्र नहीं होता ऐसा जो कहते हैं, तो यहाँ तो है ना, यहाँ तो इसको देश चारित्र कहते हैं और चारित्र में दोनों को लेते हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती और मुनिराजों को भी लेते हैं। सिद्धनी भक्ति करवी ये तो व्यवहार नेमा गयू, क्या कहा, ये अरिहंत सिद्धों की भक्ति, देवगुरु शास्त्र की भक्ति है तो व्यवहार नेमे, उसको भक्ति कह देते हैं, परंतु जिसको अंदर सम्य दर्शन नहीं है उसको वो व्यवहार भी नहीं होगा, तो उसको वो भक्ति भी नहीं कहेंगे, उसको व्यवहार नाम भी नहीं दिया जाएगा। मैंने उस दिन बोला ना, वो अपने धवला में सुबह आई थी बातें, नमस्कार तो असंख्यात प्रमाण है, असंख्यात प्रकार के हो गए, और नमस्कार किसके होगा, सम्य दर्शन से वो शुरुआत होती है नमस्कार की, और जितने वो उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा जितने भेद पाए जाते हैं उसके उतने नमस्कार के भेद हो गए, और उसमें वो ध्यान की प्रधानता बताई है नमस्कार में, आगे के गुणस्थानों में जितना ध्यान की अधिक होती है, ज्ञान और ध्यान की, वहाँ नमस्कार की अधिकता बताई गई है। वो समय सार में भी गाथा है ना, वो तीर्थंकर का नमस्कार, उसकी भक्ति किसको कहना, तो वहां तो इसको लिए ना, जीतमोह को, हाँ 31 गाथा में है ना, हाँ वहां से शुरुआत है। हाँ, सिद्धनी भक्ति करवी ये तो व्यवहार ने मा गयू, ये बीजी गाथा में छे, केम के तो विकल्प छे। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, जो हम अरिहंत सिद्धों की भक्ति करते हैं वो भक्ति को व्यवहार कह दिया, पर व्यवहार किसको होता है, जिसको निश्चय है उसको व्यवहार होता है, तो निश्चय क्या होना चाहिए, समय दर्शन, तो जिसको समय दर्शन है, आत्मा की अनुभूति है, उसको भगवान की भक्ति, उसको हम भक्ति नाम देते हैं, नहीं तो वो भक्ति भी नहीं कहलाएगी। जिसने आत्मा का अनुभव किया है, नहीं उसने भगवान को सचमुच पहचाना है, ऐसे जीव के जो अरिहंत सिद्धों की भक्ति होती है उसको व्यवहार नाम दिया जाता है, वो व्यवहार से भक्ति, और अपने आत्मा में स्थिरता वो निश्चय से भक्ति, क्योंकि ये तो विकल्प है ना, भगवान की भक्ति तो शुभ राग है, विकल्प है। अहीं तो पंचम गुण स्थान ने पण दर्शन ज्ञान चारित्र त्रणे कहेवामां आव्युं छे, अहीं तो कहे छे के नहीं, अहीं तो कहे छे के नहीं, यानी जो सामने वाले जो दलील करते हैं ना कि पंचम गुण स्थान में शुद्धोपयोग नहीं होतो, शुद्धोपयोग तो मुनि ने ज होय छे, पाठ में एम छे, पने तो मुनि नो शुद्धोपयोग छे, ए दशा जेवो शुद्धोपयोग श्रावक ने नहीं होतो एम कहूं छे, यानी मुनि का शुद्धोपयोग उनकी दशा का उनमें होगा, श्रावक जैसा शुद्धोपयोग श्रावक के होगा। इसी तो चौथे गुणस्थान वाले को भी होता है, तभी तो आत्मानुभव होगा, तभी तो सम्य दर्शन हुआ कहेंगे हम, केवल वो शास्त्र पढ़े और भगवान सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति की इसलिए वो सम्य दर्शन, ऐसा नहीं है। शुद्ध उपयोग नथी हो तो एम नहीं, केम के सम्य दर्शन थाय छे ए शुद्ध उपयोग नी भूमिका मां ज थाय छे। अभी क्या इसको इतना वो जिसको कहें ना इस पॉइंट पर बहस करते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं है और कहते नहीं नहीं गृहस्थ अवस्था में समय दर्शन शुद्धोपयोग होता ही नहीं, वो मुनि को ही होता है, तो ये पूछते भी है वो तो क्षायिक सम्यक तो, और ये भेद कैसे हो गए फिर, केवल व्यवहार से जो श्रद्धा जिसको कहने में आती है और सच्चे देव गुरु शास्त्र को उसने माना है, उसको स्वीकार है, उसकी भक्ति करता है, इसलिए उसको समय दर्शन कह रहे हैं, इसने शास्त्र से ये निर्णय किया है, उसकी शास्त्र पर श्रद्धा है इसलिए उसको समय दर्शन कहते हैं, तो ये उनकी दलील है, तो फिर औपशमिक शावशमिक और क्षायिक भेद कैसे पड़ेंगे, ख्याल में ना, चौथे गुणस्थान में क्षायिक समय दर्शन होता है, वो भेद कहा है कि क्या शास्त्र के आधार से होता है, तो यहाँ तो शुद्धोपयोग और आत्मा की अनुभूति हुई है तभी तो समय दर्शन कहेंगे, ये समय दर्शन यानी प्रतीति श्रद्धा है वो अनुभव पूर्वक ही होगी, केवल वो शास्त्र से नक्की करना उसको समय दर्शन नहीं कहते। यहाँ लिखा ना समय दर्शन थाय छे ए शुद्धोपयोग नी भूमिका मां ज थाय छे, शुद्धोपयोग ने आत्मा के अनुभव हो गया उस समय ही उसको समय दर्शन हुआ है, द्रव्य संग्रहनी 47 गाथा छे, 47 दुवहिम नहीं होता, दुविहम चाहिए। दुविहम पे मोक्ष है, झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा, दुविहम चाहिए, दुविहम पे मोक्ष है, दुविहम हाँ वी चाहिए, दुविहम वी रस्व, दुविहम पी मोक्ष है वो झाणे पाऊ नदी जम मुनि नियमा। मैं बाद में बताऊंगी चाहिए तो द्रव्य संग्रह। ये वो पांच छे निश्चय मोक्ष मार्ग ने व्यवहार मोक्ष मार्ग, दुविहम नहीं, दुविहम, दुविहम है कि दुविहम है मालूम नहीं है, दुविहम हाँ दुविहम होना चाहिए। विह यानी विध, यानी दो प्रकार का दुविहम, विध दुविध आप है हाँ, दुविध यानी दो प्रकार के दुविहम। तो दुविहम पे मोक्ष है बे प्रकार ना मोक्ष नो हेतु। ये मोक्ष का हेतु क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष का हेतु मोक्ष मार्ग। तो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कौन सा? निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो दोनों ही मोक्ष मार्ग ध्यान अवस्था में प्राप्त होता है। क्या कहते हैं? दुविहम पि मोक्ष है बे प्रकार ना मोक्ष नो हेतु। देखो बे प्रकार ने दो, ऐसा नहीं है कि कोई आत्मा में स्थिर होकर मोक्ष प्राप्त करता है और कोई बाहर की क्रियाएं करता करता मोक्ष होता है, ऐसे दो नहीं है। जितनी अंतरंग में स्थिर, देखो जब शुद्धोपयोग में लीन हुए तभी उनके सातवां गुण स्थान आ गया, फिर सातवां छठवां चलता रहता है। तो उसी समय उनके जो बाह्य में विकल्प है 28 मूल गुण पालन करने के, उसको आरोप कहते हैं कि ये मोक्ष का कारण है। वो मोक्ष का कारण ही है। उस भूमिका में वैसे ही शुभ भाव होते हैं, वैसे ही शरीर की क्रियाएं हैं, सब होगा, जिसको कहेंगे निरतिचार पालन होगा ही, परंतु वो तो बंध का हेतु है, वो मोक्ष का हेतु नहीं है। फिर भी जहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, अंतरंग में स्थिरता उसके साथ होने से उसको भी कह देते हैं। जैसे जीव तो हम स्वयं है, चैतन्य स्वरूप जो जीव द्रव्य, परंतु जहाँ जीव रहता है उस शरीर को भी जीव कह देते हैं ना, कि एक इंद्रिय जीव है, द्विंद्रिय जीव है, तीनिंद्रिय जीव है, ये उसको हमने, ये जल का एक है, पृथ्वी का एक है, वो काया के साथ वाले को भी जीव कह दिया हमने। ऐसा होता है ना, ये हमको जीव, ये जीव बैठे हैं ऐसा कहेंगे, परंतु हम तो शरीर को देख रहे हैं, वहां उपचार हो रहे हैं ना उसमें, जैसे हम सजीव भी कहेंगे या जीव भी नाम दे देंगे उसको, परंतु जहां जीव ही निकल गया उसको जीव कहेंगे क्या? अभी उसको कहेंगे बॉडी, डेड बॉडी, अभी हटाओ जल्दी। कुछ बोलना नहीं। तो झाणे, झाणे यानी ध्यान में, पाऊ नदी जम मुनि नियमा, ध्यान में प्राप्त थाय छे, यानी जो तत्व विचार के काल में अंतरंग में स्थिरता हो जाती, जिसको हम ध्यान कहेंगे, उस काल में शुद्धोपयोग होता है और उसी समय समय दर्शन हो जाता है। यहाँ मुनि यानी वो तो जो समय दृष्टि, ऐसा कहना है। एम कोई विकल्पनी दशामा अने आमने आम मोक्ष मार्ग नहीं, तो क्या कहा? विकल्प की दशा यानी अभी हम शास्त्र पढ़े रहे और जब हम उस पर विचार करते हैं तो उसी शब्दों में जिसको जल्प कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये क्या है? विकल्प की दशा है। जो विकल्प के वो शुभ भाव है, उसको राग कहा है, तब तक वो अनुभव नहीं है। अनुभव में वो सारे विकल्प मिट जाते हैं और ज्ञान से अपने ज्ञान स्वभाव को जानते रहता है, तब वो उसका अनुभव कहेंगे। तो विकल्प की दशा माने आमने आम मोक्ष मार्ग न थी, तो आमने में ऐसे चलते फिरते किसी अन्य का विचार कर रहे हो या अकेले शास्त्र पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते, नहीं, वो आत्मसन्मुख परिणाम में ही उसको समय दर्शन होगा। अंतर्मा स्वरूप शुद्ध चैतन्य छे, एनु ध्यान लगावी दीदु, ध्येय बनावी ने ध्यान लगावी। देखो ध्यान तो सब रखते किसी ना किसी का, पर यहाँ ध्यान का ध्येय क्या होना चाहिए? शुद्ध चैतन्य। ये ध्यान मा निश्चय समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त थाय छे, वो भले चौथे वाला हो या कोई सातवें में जाता हो या पांचवें में जाता हो, अने साथे जरी राग रहे छे। अभी जो ध्यान में जिसको शुद्धोपयोग में समय दर्शन हुआ है, और उसके अनंत अनुबंधी मिथ्या तो गया, परंतु अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन है, तो उसको कहीं ये चौथे में गया। अब कोई ध्यान में इतनी स्थिरता इतनी लीनता हो जाती है कि उसके दो कषाय रहे, दो कषाय निकल गए ने अनुदय हुआ, तो उसको कहेंगे ये पंचम गुण स्थानवर्ती है। और जो मुनि जितनी स्थिरता हो जाए तीन कषाय चौकड़ी का, जिसको हम अनुदय कह रहे हैं, अकेला संज्वलन रह जाए, तो उसके बाह्य में भी ऐसे वो व्रतादि का पालन है, उसके शुभ भाव भी इस पद्धति के हैं, तो उन शुभ भावों को मोक्ष मार्ग कह देते हैं। परंतु मोक्ष मार्ग में जो अंतर में स्थिरता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र, वही सच्चा मोक्ष मार्ग है। और जो बाह्य व्रतादि है उसको कह देना, यही कहते हैं। साथे जरी राग रहे छे तेने व्यवहार मोक्ष मार्ग नो आरोप आपी ने, ये उपचार है, आरोप करना है ने उपचार करना, व्यवहार कहो छे छे तो राग दुवहिम नहीं दुविहम पी छे ने, आगे भी दुविहम पी मुख हे उम जाने पाऊ नदी जम मुनि नियमा। 47मी गाथा छे, 47 એટલે શું, 4 અને 7, હિન્દી ભાષા બધી નથી આવડતી, આહાહા। અહીં કહે છે કે શ્રાવકને પણ જે સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે એ બહિર તત્વ છે। ક્યા કહા, એ સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર સંવર નિર્જરાવાળી, એને જીસકો સ્વભાવ પર્યાય ઉત્પન્ન હુઈ હૈ, જો નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ હૈ, પરંતુ વો પર્યાય હૈ, ઇસલિયે ઉસકો બહિર તત્વ કહે દિયા। यहाँ की अपेक्षा है नियम सार की। देखो जो जहाँ ज्ञान की अपेक्षा कथन होगा, पंचास सिकाय हो, तो राग तो जीव का पर्याय में होता है, जीव के कारण होता है, ऐसा कहेंगे। प्रवचन सार में भी ज्ञान प्रधान कथन है, वहाँ तो राग भी जीव में ही उत्पन्न होता है, वो जीव ही राग रूप हो गया, ऐसा कहेंगे वहाँ पर। तो जहाँ जिस अपेक्षा से जिस गाथा का विषय है वहाँ वैसा समझना। प्रयोजनवश जिसको कहेंगे यहाँ हमारे अधिक आत्मा में स्थिरता करने कराने के लिए, इसको जुदा कह दिया, बहिर तत्व कहकर उसका लक्ष्य छुड़ाया है। वो है पर्याय में, परंतु उसका वो आदरणीय नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है, आश्रय लायक नहीं है, इसलिए उसको हे ये कह दिया। कहते ये बहिर तत्व छे, एने तो सामिल्यो पण न होय के आ ते जीसू छे, ए अहीं कहे छे सांभळ तो करो प्रभु, तारी अंदर एटली मोटी चीज पड़ी छे के इनी मोटप आगळ दुनिया में बीजी कोई मोटप नथी। क्या कहा, तारी चीज यानी हम जीव द्रव्य है ना, तो उसका पूरा पूरा अखंड यानी अनंत गुणों का पिंड हम स्वयं है, ये आखी चीज है। तो ये आखी चीज पड़ी छे एनी मोटप, यानी उसका इतना महात्म्य है कि उसके सामने दुनिया में बीजी कोई मोटप नथी। आगे क्या लिखा, देखो सिद्धनी पर्यायनी पण एनी पासे मोटप नथी। आप कहेंगे ये तो अभी अल्पज्ञ है, और आप कह रहे कि सिद्ध के सामने भी उसकी मोटप नहीं और उसकी पर्याय ली, पण सिद्ध की पर्याय ली और हमारा स्वभाव लिया, इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। सिद्धों का स्वभाव भी हमारे जैसा ही है, पर यहाँ कंपेयर किसके हो रहे, मैं स्वयं जो चीज हूँ, क्या हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, तो ऐसी सिद्ध की पर्याय तो अनंत इसमें से निकलती रहने वाली है भविष्य में। तो मेरे स्वभाव के सामने सिद्ध की पर्याय की पिन वो मोटोपे ने महिमा नहीं है, महिमा न थी। ख्याल में आते ना कैसे कंपैरिजन कर रहे, अपने स्वभाव के साथ सिद्धों की पर्याय की, हमारे पर्याय के साथ उनकी पर्याय की कंपैरिजन नहीं हो रही है। पर्याय में तो अभी विराग द्वेष है, अधूरा है, सब कुछ पड़ा है, परंतु इसने लक्ष्य किसका करना है, अपने स्वभाव भाव का। और उसका इतना महात्म्य जब नहीं आता है, अरिहंत सिद्धों से भी, उनकी पर्याय से भी, मेरा जो चीज जो मेरी है, जो स्वभाव भाव है, वो महान है, ए वो भगवान आत्मा, उसको भगवान आत्मा कह दिया। वर्तमान वर्तमान ध्रुव नित्यानंद प्रभु, ये बताया था ना, हर समय वो वर्तमान 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 है, विद्यमान है। अनंत गुणना समुदाय नो एक पिंड, वहां पर भी उसके भेदों पर लक्ष्य नहीं देना है। तेने ही द्रव्य अथवा शुद्ध भाव कहे छे, मैंने पहले भी बताया द्रव्य कहने से वो गुण पर्यायवत द्रव्य हम सीखे, पर उस द्रव्य की बात नहीं, वो नित्य ध्रुव जो पारिणामिक भाव जो स्वभाव भाव है उसको यहाँ द्रव्य कह दिया है। उसी को यहाँ शुद्ध भाव कहा है। ए द्रव्यनी अपेक्षा थी संवर निजराने मोक्षनो मार्ग पण परद्रव्य कहेवामां आवे छे, क्योंकि ये सभी तत्वों को यहाँ सभी पर्यायों को यहाँ परद्रव्य कहकर बहिर्तत्व कहने में आया है। खूबी शू छे के पाठमां तो टूंका शब्द छे, माटे हेय उपादेय कहूं के सात तत्व छे ए हेय छे, संवर निजरा ने मोक्ष पण हेय छे। समझानु काय, जीवादि सात तत्वों समूह आयु ने परद्रव्य होवाने लीधे पाठ में हेय कहूं। टीकाकार एम कहे छे के खरेखर उपादेय नथी। देखो क्या कहा, गाथा में कहा हेय है और टीकाकार कहते खरेखर उपादेय नथी, क्योंकि उसको किसी अपेक्षा से उपादेय भी कहने में आते, क्योंकि प्रकट करने योग्य उपादेय तो बता देते, हमने याद भी किया था, परंतु यहाँ खरेखर उपादेय नथी। पाठ में हेय छे एम न लेता सात तत्व उपादेय नथी एम कहूं छे। समझानु काई मार्ग बापा, परमात्मा जिनेश्वर नो मार्ग कोई अलौकिक छे। लोको तो आ बहार मा व्रत लीधा, तप करियू, जंगल मा रहेवुं, नग्न रहेवुं, आवी क्रिया, आवा परिश्रम सहन करवा, ए बधो धर्म छे एम माने छे। हां, ए धर्म फर्म नथी। आहाहा, लोक रंजन नो धर्म बताविने लोकोनु रंजन थई जाय छे। आ तो आखरी वात छे, क्या कहे। लोक रंजन ने मनोरंजन, जिसमें लोग उसमें रमते हैं और उसी को धर्म मान लेते हैं, और समाज में जो 99% तक तो ऐसा ही मानते हैं कि सच्चा तत्व ज्ञान क्या है उसके पता नहीं है, और इसी का महत्व भी आता है, महिमा इसी की आते कि हमने इतना किया। पहले कुछ नहीं कहते थे, हमने अभी इतना सब कर लिया, इतने व्रत तप कर दिया। आ तो आखरी बात है। अहियाँ तो जीवादि सात तत्वों एटले जीवनी एक समय नी पर्याय, अजीवनु ज्ञान, देखो आई ना बात, अजीवनु ज्ञान, क्योंकि अजीव तत्व यानी जीव की पर्याय में लेना है ना सब कुछ, जीव के पर्यायों को लक्ष्य करने नहीं, उसको उपादेय नहीं, ऐसा कहना है। तो अजीव द्रव्य को कहाँ लिया जीव की पर्याय में, तो अजीव संबंधी ज्ञान लेना, अजीवनु ज्ञान, अजीवनु ज्ञान, अजीव तो पर छे, समझ में आई ना बात। ये यहाँ जो जीव की पर्यायों में सात तत्व घटित कर रहे, हम जो द्रव्य तत्व कहते तो अजीव द्रव्यों को या अन्य जीवों को हम अजीव तत्व में डालते थे, उसकी बात नहीं है। एक ही द्रव्य की उसके अपने पर्याय को लेना है। जीव कहने से व्यवहार जीव, जो जीव की पर्याय लेना, और ये अजीव संबंधी ज्ञान वो जीव की अपनी पर्याय है। अजीव तो पर छे, वो पर पदार्थों को यहाँ नहीं लेना, जीव के ही पर्यायों को लेना है। तो अजीव संबंधी जीवनु ज्ञान, आश्रव, पुण्य पाप, बंध, राग मां रोकाई जाऊं, देखो यहाँ भी कर्म की बात नहीं ली, जीव की ही पर्यायों को लेना है। ये कर्म का आना और कर्म का बंधना उसकी बात ही नहीं की है, क्योंकि हमें वो परद्रव्य से कुछ लेना देना नहीं है। जीव को ही अपनी पर्याय में जो कुछ है उससे अपने त्रिकाली स्वभाव को जुदा जानना है, उससे भेद ज्ञान करना है। इसलिए इनको सभी पर्यायों को उपादेय नहीं कहकर उसको दूर कर रहे। संवर एटले शुद्धि नी उत्पत्ति, निर्जरा एटले शुद्धि नी वृद्धि, अने मोक्ष एटले शुद्धि नी पूर्णता, ए सात तत्व छे। समझ में आई बात। जीव तत्व में जीव की एक समय की पर्याय ली, अजीव तत्व में अजीव का ज्ञान लिया, और बाकी तो मालूम है, आश्रो बंध संवर निर्जरा तत्व सम्मोक्ष, ए साते तत्वों नो समूह परद्रव्य होवाने लीधे ये सभी पर्याय है जीव के। यह पर्याय मात्र को जुदा बताना है। परद्रव्य होवाने लीधे, हा हा, आत्मा सिवाय बीजा अनंत परद्रव्य छे ये तो है, ये छे, यानी उसकी तो बात ही नहीं यहाँ पर। यहाँ तो जीव की है अपनी पर्याय की बात है, वो सबको तो पर में डाल ही दिया था। त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव अष्ट पाहुड़मा मोक्ष पाहुड़नी 16मी गाथा में एम फरमावे छे के परदव्वाओ दुग्गई, प्रभु दुग्गई ने दुर्गति, प्रभु एम कहे छे के अमारी बाजू तारू लक्ष्य थसे तो तने राग थसे, એ તારી દુર્ગત છે. એને પરદ્રવ્ય હું કે સન્મુખ હોના, ભગવાન કહે રહે કે મેં તેરે લીએ પરદ્રવ્ય હું ઓર તું મેરા લક્ષ્ય કર રહા હૈ, તો એ રાગ હૈ ઓર એ તેરી દુર્ગતિ હૈ. એ ચૈતન્યની ગતિ નથી, રાગરૂપ એ ચૈતન્ય કા ચૈતન્ય કા પરિણામ ચૈતન્ય રૂપ હોના ચાહીએ. રાગ કુછ ચૈતન્ય રૂપ બાત નહીં હૈ, હો રહા હૈ જીવ કે પર્યાય મેં, પરંતુ જીવ મેં એસા કોઈ એક ભી ગુણ નહીં અનંત ગુણો મેં જો રાગરૂપ રાગ કરના એ ઉસકા સ્વભાવ હો. તો કહેતા ચૈતન્યની ગતિ નથી, સમજાણું કાંઈ. અષ્ટપાહુડમાં મોક્ષ પાહુડની, એ અષ્ટપાહુડ નામ કા ગ્રંથ હૈ, કુંદકુંદાચાર્ય કાહી હૈ, ઉસમે મોક્ષ પાહુડ નામ કા જો એક પ્રકરણ હૈ, ઉસમે 16મી ગાથા. પરદવવાઓ દુગ્ગઈ, તીર્થંકર કહે છે કે અમે તો તારા દ્રવ્યથી પરદ્રવ્ય છીએ, તો પરદ્રવ્ય દુર્ગતિ છે. અમારી બાજુ તારું લક્ષ્ય જશે તો તને રાગ જ ઉત્પન્ન થશે. રાગ એ ચૈતન્યની ગતિ નથી, એ તો દુર્ગતિ છે. આહા હા, નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ કરે એ તો રાગ છે. એ હંમેશા શીખાતે ને, કહી જાતે તો બતાતે હૈ, જો નમોકાર મંત્ર નહીં બોલતા હૈ વો જૈન નહીં, ઓર વો તો કાયમ નમોકાર મંત્ર હી બોલતા રહા વો ભી જૈન નહીં. ક્યું નહીં? હા, ક્યુંકિ નમો અરિહંતાણ નમો સિદ્ધાણમ દિનભર 24 ઘંટે નમોકાર મંત્ર ભી જપેગા વો ભી જૈન નહીં હૈ, ક્યુંકિ ઉસને તો પર કા લક્ષ્ય કિયા હૈ, અપના લક્ષ્ય હી નહીં કિયા. નમો હમ ભગવાન કે નમસ્કાર ક્યુ કહેતે, ક્યુંકિ ઇતના અદ્ભુત માર્ગ ઉન્હોને હમે બતાયા ઇસલિયે ઉનકા સ્મરણ કરતે, પરંતુ ઉન્હોને માર્ગ બતાયા ઉસ પર નહીં ચલ રહે, બસ ઉન્હી કા સ્મરણ કરતે રહે ગયે હૈ. જૈસે હમ બચ્ચોં કો પઢાતે તો યા પહેલે પહેલે એસે ઉદાહરણ દેતે થે, હમ કહીં જા રહે હૈ અનનોન પ્લેસ હૈ કહીં, તો જાતે જાતે રસ્તે મેં વો ક્યા હોતા હૈ, કોઈ એસે સ્ટ્રીટ આતે ચાર પાંચ રોડ હોતે થે, સેન્ટર મેં એક ખંભા હોતા હૈ ઓર ઉસમે એક પાટિયા લગી રહેતે, યે ઇસ દિશામાં યે ગાંવ હૈ, ઇધર યે ગાંવ હૈ, ઇધર યે ગાંવ હૈ, ઇસ તરહ સે. તો હમ ગયે તો ક્યા હુઆ થા, તો ખંભા વો તો ગિર ગયા થા નીચે, તો નીચે ગિર ગયા તો અભી હમે કોઈ ગાંવ કા રસ્તા કૈસે સમજેંગે, તો અબ ક્યા કરેંગે, અભી કૈસે જાયેંગે આગે. હા બોલો, કિસકો પૂછના, કોઈ નહીં થા ઉધર. અરે જીસ ગાંવ સે આયે વો તો રસ્તા માલુમ થા ના, તો ઉસ ગાંવ ઉસ તરફ વો પાટિયા કરો, તો હમને દે, તો હમને ઉસ ખંભે ને હમે રસ્તા બતાયા, તો હમને ક્યા ક્યા હાર ફૂલ સબ લા કે ઉસકો ચઢા દિયા, ઉસકી આરતી ઉતારને લગે ઓર ઉધર હી બેઠે પૂજા કરતે, તો આગે કબ પહોંચેંગે. એસે હી ભગવાન ને તો હમે રસ્તા દિખા હૈ, ઇસલિયે ઉનકા હમે વિનય ઉનકા આદર હોતા હૈ, પરંતુ હમ પૂરી લાઈફ ટાઈમ તક ઉનકી ભક્તિ હી કરતે બેઠે હૈ, ઉન્હોને જો માર્ગ બતાયા હૈ ઉસ પર બિલકુલ નહીં ચલે, તો હમારી ભી એસી પરિસ્થિતિ કહેંગે. ઉસકો તો હમ પાગલ કહેતે હૈ, પરંતુ એ હમ ક્યા કહે રહે, ક્યુંકિ મનુષ્ય ભાવ ઇસમે ઇતની બુદ્ધિ કી વિશેષતા હૈ, શાસ્ત્ર કે અભ્યાસ કી ભી યહી મુખ્યતા હૈ, ઓર ઇસ ભાવ મેં અગર હમને યે સુનકર યા સમજકર અપના નહીં કલ્યાણ કિયા, તો આગે એસા મોકા ભી ન જાને કબ આ સકતા હૈ, યદિ નહીં ચેતેગા તો. હમ તો સુબહ વિષય મેં આતા હૈ, અસંખ્યાત અસંખ્યાત પુદગલ પરાવર્તન કાલ તક હો સકતા હૈ કે મનુષ્ય ભાવ ફિર દુબારા ન મિલે, અસંખ્યાત પુદગલ પરાવર્તન તક યદિ સમ્યક તો ન હો જાય તો. તો જાયગા નિગોદ મેં સમય દર્શન હૈ, પરંતુ અંતિમ ભાવ હૈ ઓર મોક્ષ નહીં હુઆ હૈ, તો કહાં જાયગા, મિથ્યા તો મેં જાકર નીચે ચલા જાયગા. દેવ પર્યાય બાંધતા તો 2000 સાગર કૈસે પૂરે હોતે, 2000 સાગર પૂરે હો ગયે આપ કહે રહે ના, યાની ઉસકા અંતિમ ભાવ હૈ. દેવ મેં જાના હોતા તો સાધિક પલ્લે પ્રમાણ તો હો જાતા, સમય દર્શન કે બાદ અગર દેવ પર્યાય બાકી હૈ અગર કહેંગે આપ, તો સાધિક પલ્લે પ્રમાણ તો હો જાતા, ક્યુંકિ વૈમાનિક મેં જાતા વો. હા, यानी पहले ऐसे कहते ना त्रस पर्याय है, लास्ट में नहीं समय दर्शन करेंगे तो एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ समय दर्शन हो जाए तो भी एक इंद्रिय में जाना पड़ेगा, मिथ्या तो में जाकर, क्योंकि अंतिम भव अगर कहते हो तो उसके एक ही रास्ता है कि अंतिम भव में मोक्ष होगा तो ही छुटकारा है, नहीं तो क्या होगा, एक इंद्रिय में जाना ही है। और त्रस की पूरी 2000 सागर स्थिति उसी को मिलती है जो एक इंद्रिय में बहुत लंबे काल तक घूमा है, या तो अनंत काल या तो असंख्यात लोक प्रमाण काल, जो एक इंद्रिय में जिसने लगातार भव किए हैं उसी को त्रस की उत्कृष्ट स्थिति मिलती है। एक इंद्रिय के 2-4-5 भव करके आए और त्रस में 2000 सागर रहे, ये नहीं हो सकता, उसमें भी कंडीशन है बहुत सारे, क्या करे। और उसमें भी मनुष्य पर्याय मिले ही ऐसा नहीं है, हो सकता है पूरे 2000 सागर रहा, तिर्यंचन आर के और देव के भव किए उसमें, ये हो सकता है, क्योंकि वो सुबह
बहन को कर्णयोग कर सिखाएगी तो कल से नहीं आएगी
वो तो अभी महाबंध पढ़ रही है। अरे वाह, हाँ हाँ, उसमें बहुत सारी बातें आएगी, उसमें बहुत सारी बातें डिराइव होती है, बहुत अच्छा है वो, और जहाँ पॉसिबल है वहाँ तो एक्सप्लेन किया ही है, नहीं समझता है तो लिख के रखना तभी और बाद में पूछ लेना। ये नहीं, उसमें तो इतनी बातें, हमें कितनी बातें नहीं मिली महाबंध में, क्योंकि इसको कहें हम डिराइव कैसे करना, आगम पढ़ने ने ऐसा नहीं लिखा होता है डायरेक्ट, ये हमको तो उसमें से हमको डिराइव करना पड़ता है। हाँ, यानी प्रूफ हो सकता है, वो एक प्रूफ होता है कि जो हम सिद्धांत बताते हैं उसके लिए वो प्रूफ होता है, और आगे बहुत सारी बातें आएगी, पहली पुस्तक में इतनी नहीं, आगे ज्यादा है। हाँ देखो, ये नया पेरिग्राफ, अहियाँ तो संवरणे निजरा जे राग रहित दशा छे, ए आत्मद्रव्यना आश्रय उत्पन्न थई छे। संवर, निजरा ने मोक्ष ए त्रण अने चार ने साथे मेळवीने, जीव अजीव आश्रय ने बंध ए चार ने मेळवीने, अने संवर निजरा मोक्ष त्रण एटले सात, ए साते ने मेळवीने परद्रव्य कह्युं छे। समझाणुं काई अंदर छे ने? हाँ, हजी तो हजी लोग तो आ दया करे, व्रत करे, अपवास करे, महीना महीना 15-15 दिवस ना पानी वगर ना अपवास करे, त्यारे ओहो हो हो घनी तपस्या करी, अरे धूले नथी, लंघन छे। तब तो इने कहिए कि जेने पोतानी शुद्ध चैतन्यनी दृष्टिनो स्वद्रव्यनो अनुभव थयो, परद्रव्य ने हेय जाणीने पछी स्वद्रव्यमां लीनता थवी ए चारित्र छे। चारित्र कोई बाह्य आचरण या चारित्र नहीं है, संयम कहो, तप कहो, या अंतरंग में जो स्थिरता है उसी का नाम है संयम। ये सब ये नियम सार में आने वाली बात है, सामयिक किसको कहना, प्रतिक्रमण किसको, ये सब बातें इसमें आ जाएगी। भक्ति किसको कहना, तो कहते स्वद्रव्य ने अनुभव थयो, परद्रव्य ने हेय जानी ने, हेय क्या अर्थ होता है, उसको आदरणीय नहीं है, सन्मुखता उसका आश्रय करने लायक नहीं है, आश्रय करने लायक एकमात्र स्व तत्व है। पची स्वद्रव्य में लीनता थवी ए चारित्र छे, अने चारित्र में उग्रता पुरुषार्थ थी विशेष उग्रता थवी ए तप छे। तपना उसमें अंतरंग में जो स्थिरता हुई और दृढ़ता से अंदर स्थिर हो जाना वो तप होता है, इसलिए मुख्यतः मुनियों को वो तप कहने में आते हैं, क्योंकि उनकी स्थिरता और ज्यादा है। हाँ, व्याख्यापन जुदी, ए पण अहीं तो कहे छे के भाव तप छे, शुद्धि नी वृद्धि थाय छे, ए पण परद्रव्य छे, अने तप वाली जो पर्याय है वो तो शुद्धि की वृद्धि हो रही है, वहां पर तपसा निर्जरा आता है ना, तो वृद्धि हो रही है तो निर्जरा है, तो कहते वो भी परद्रव्य कहा, क्यों? उसके आश्रय से नई नई पर्याय नहीं होगी, वो पर्याय है, वो स्वयं आश्रय करने वाली है, पर आश्रय किसका करना है, स्वद्रव्य का, हाँ एक समय पूर्ति है, और पर्याय के आश्रय से शुद्धि शुद्ध पर्याय नहीं होती है, उसमें बोलना नई पर्याय नहीं होते। यहाँ आगे बढ़ते देखो, पांचवा कारण आप उपादेय केम नथी, परद्रव्य होवाने लीधे कहे आदरणीय केम नथी, के परद्रव्य छे तेथी उपादेय नथी, ख ખરેખર ઉપાદેય નથી, ખરેખર તે વાસ્તવ એટલે ખરેખર, સમજાનું કાંઈ? જીવાદી સપ્ત તત્વ જાતમ પરદ્રવ્યત્વાત નહીં ઉપાદેયમ, એ સંસ્કૃત મેં સે પઢા ઉન્હોને, એને ખરેખર ઉપાદેય નથી એમ આવ્યું ને, પરદ્રવ્યાત નહીં ઉપાદેયમ, અને વો પરદ્રવ્ય હોને કે કારણ ઉપાદેય નહીં હૈ, એ ઉનકો કહેના હૈ। હજી તો પુણ્યના પરિણામ કરવામાંથી નિવૃત્તિ મળે નહીં, આહા હા, સંસારના પાપ આખો દી, ધંધા પાણી બાયડી છોકરા આખો દી પાપ, પરદ્રવ્યની પ્રવૃત્તિમાં, એવો અલગ શબ્દ ચાહીએ, પરદ્રવ્યની પ્રવૃત્તિમાં તો એટલું પાપ છે, ક્યાં કહા, પરદ્રવ્ય કી પ્રવૃત્તિને જો કુછ, જો પૈસે કે લીએ અન્ય કે લીએ જો કુછ ચલ રહી વાત હૈ તો એ તો પાપ હી પાપ હૈ। હવે પાપમાંથી નિવૃત્તિ લઈને જેને પુણ્ય પણ નથી થતું એને તો આ વાત રૂચતી નથી। અહીં તો પુણ્યમાંથી નીકળીને આત્માના આશ્રયથી શુદ્ધિનું આનંદનું વેદન થયું, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન થયું, અતિન્દ્રિય આનંદ મોક્ષ માર્ગનો અર્થ, અતિન્દ્રિય આનંદનું વેદન તેનો મોક્ષ માર્ગ, એને અતિન્દ્રિય આનંદ કા વેદન હોના વહા સે મોક્ષ માર્ગ શરૂ હોતા હૈ, ઓર મોક્ષ માર્ગ એ અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ હૈ, જહાં મોક્ષ ઇતના ઉત્કૃષ્ટ અનંત આનંદ સ્વરૂપ હૈ મોક્ષ, તો મોક્ષ કા માર્ગ દુઃખમય હોગા ક્યાં, ખ્યાલ મેં આતી ના, વો ભી આનંદમય હૈ, અતિન્દ્રિય આનંદમય, ઓર હમ ક્યાં કહેતે, અરે રે બિચારે મુનિરાજ ઇતને ઠંડી મેં બરસાત મેં નગ્ન રહે રહે જંગલ મેં રહે રહે, વો બિચારે નહીં, બિચારે હમ આપ હૈ, હા, ક્યોંકિ યહાં તો કશાય કે અગ્નિ મેં જલ રહે હૈ, ઓર વો તો અપને અંતરંગ મેં સ્થિરતા કર આનંદ કા અનુભવ કર રહે, કેમ કે ભગવાન અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ છે। દેખો દ્રવ્ય હિ આનંદ સ્વરૂપ હૈ ભગવાન, એને વો બહારી ભગવાન ને, હમ સ્વયં ભગવાન, એને ભગવાન આત્મા અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વરૂપ છે, આનંદમય હૈ વો આત્મા, અતિન્દ્રિય આનંદથી ઠસોઠસ ભરેલો છે, ઉસકો કહેતે આનંદ ઘન કહેતે હૈ, વિજ્ઞાન ઘન કહેતે હૈ, ઉસકા પિંડ હૈ એ અતિન્દ્રિય આનંદનો આશ્રય કરીને। દેખો એ સ્વભાવમાં જો અતિન્દ્રિય આનંદ સે ઠઠાસ ભરલેલા સ્વભાવ હૈ વો ભરા હુઆ, ઉસકા લક્ષ્ય કરને સે પર્યાય મેં આનંદ કી પ્રાપ્તિ હોગી ઓર અનુભવ ઉસકા હોગા, વેદન તો પર્યાય કા હોતા હૈ પણ કહેંગે સ્વભાવ કા અનુભવ ક્યા, કહેને કે લીએ ક્યું કે જૈસા સ્વભાવ હૈ વૈસા સ્વભાવ કા લક્ષ્ય કરકે જો પર્યાય પ્રકટ હુઈ હૈ ઉસકો કહેંગે સ્વભાવ કા અનુભવ હુઆ, કહેંગે પરંતુ વો અનુભવ વેદન જો અતિન્દ્રિય આનંદ વો પર્યાય મેં હુઆ હૈ। તો કહેતે અતિન્દ્રિય આનંદનો આશ્રય કરીને જે સમય દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રમાં અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવ્યો એને પણ અહીંયા તો પરદ્રવ્ય કહે, જો ધર્મ હૈ ધર્મ કી શરૂઆત હુઈ હૈ ઉસકો ભી યહાં પર્યાય હોને સે ઉસકો પરદ્રવ્ય કહા, પૂર્ણ નથી ને, દેખો પરદ્રવ્ય ક્યું કહા, એક સમયની પર્યાય છે, એટલે કેવળ જ્ઞાન પણ એક સમયની પર્યાય છે। આપ કહેંગે કેવળ જ્ઞાન તો જ્ઞાન કી પૂર્ણતા હૈ, હા પણ વો પર્યાય હૈ એક સમય કી હૈ, કેવળ જ્ઞાન એ સાદી અનંતની પર્યાય નથી, ક્યાં કહેતે હૈ, રહે છે સાદી અનંત, દેખો એક એક સમય કરકે વો સાદી અનંત કાલ તક કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાન હર સમય કેવળ જ્ઞાન નયા નયા હોતા હૈ, એટલે એક હી પર્યાય સાદી અનંત કાલ નહીં ટિકતી હૈ, સાદી અનંત કાલ તક હર સમય વો પર્યાય હોતી રહેતી હૈ, ઉસકો કહેંગે કેવળ જ્ઞાન સાદી અનંત, એટલે ઉસકો એક સમય વાલી કહા, પણ એક સમયની પર્યાય છે, બીજા સમય બીજું કેવળ જ્ઞાન, ત્રીજા સમય ત્રીજું કેવળ જ્ઞાન, આહા કેવળ જ્ઞાન પર્યાય છે ગુણ નથી, તો એસી અનંત પર્યાય નિકલતે રહે ફિર ભી ગુણ તો વૈસા કા વૈસા હૈ, ઓર એસા એક ગુણ નહીં એસે અનંત ગુણ હૈ, ઉસકા અભેદ અખંડ પિંડ વો વો મેં હું, ઇસ તરહ સે ઉસ મેં કા લક્ષ્ય કરના હૈ। ઓલામાં ગયા હતા ને, શું કહેવાય, જાત્રાનું સ્થળ મથુરા, મથુરામાં બધા પંડિતો બેઠા હતા અને આ વ્યાખ્યા થઈ કે કેવળ જ્ઞાન પણ પર્યાય છે ગુણ નથી, ત્યાં તો ખળભળાટ થઈ ગયો, આ શું કહે છે, ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક દેખે પર્યાય, પર્યાય છે પ્રકટ થઈ છે પર્યાય છે. ધ્રુવ એ પ્રકટ થતું નથી અને ધ્રુવ આવરણમાં નથી આવતું. ક્યાં કહા, ધ્રુવ તો નિરાવરણ હૈ. અગર એ પર્યાય નહીં હોતી ઓર પર્યાય મેં અગર આવરણ નહીં માનેંગે તો અભી તક ક્યો નહીં હુઆ કેવલ જ્ઞાન. ત્રિકાળી ભગવાન ધ્રુવ પ્રગટ થતો નથી અને એને આવરણ નથી. સકળ નિરાવરણ પરમાત્મા ત્રિકાળી આત્મા ઉસકો સકળ નિરાવરણ કહેતે હૈ ને. આવી વાતો છે, આવે છે ને 320 ગાથા પાછળથી લેશે કદાચ. 320 કીધી છે ત્યાં પાછળ આવ્યું છે જે સકળ નિરાવરણ દ્રવ્ય સ્વભાવ છે એ તો સકળ નિરાવરણ છે. દ્રવ્ય મેં જો વહા કોઈ આવરણ નહીં હૈ, ના બંધ હૈ ના મોક્ષ હૈ, અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ મેં પ્રત્યક્ષ જાણને મેં આવે એસા પ્રત્યક્ષ થનાર એ ઉસમે ગુણ હૈ એસા પડાય તો પ્રત્યક્ષ હો જાય પ્રત્યક્ષ ને અપને અનુભવ મેં આ જાય. અવિનશ્વર કાયમ ટીકને વાલા નિત્ય તો અવિનશ્વર ઉસકા વિનાશ કભી નહીં હોગા. શુદ્ધ પારિણામિક પરમ ભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મ તત્વ દ્રવ્ય નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય એ જ ઉપાદેય છે. દેખો ક્યાં ક્યાં ઉસકે વિશેષણ જોડ દીએ. ધર્મી નિજ પરમાત્મ દ્રવ્યનું ધ્યાન કરે છે, ખંડ ખંડ જ્ઞાનનું ધ્યાન નથી કરતો. ક્યાં કહા, એ ખંડ ખંડ જ્ઞાન જો અભી હમારે જો જાનને મેં આ રહે હૈ, કભી દેખતે હૈ સુનતે હૈ ઓર ક્યા ક્યા હૈ, યે કૈસે હૈ, ક્ષોપશમ જ્ઞાન હૈ, વો ખંડ ખંડ જ્ઞાન હૈ. ઓર યે અપના સ્વભાવ કૈસા હૈ, અખંડ જો ઉપર આતા ને અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ મેં. જે સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ મેં પર્યાય તેનું ધ્યાન કરે છે. દેખો ધ્યાન કરને વાલી પર્યાય પણ ધ્યાન કિસકા કર રહે હૈ, સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ મેં ઉસકા. પર્યાય એને માને છે, પર્યાય એમ નથી માનતી કે હું પર્યાય છું. પર્યાય એમ માને છે કે જે સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસ મેં અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિક પરમ ભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય તેજ હું છું. પર્યાય મેં અપને કો અલગ રખ કર વો નહીં જાન રહી કે મેં પર્યાય હું ઓર મેં ઇસકો જાન રહી, એસા નહીં હૈ. વો અભેદ હોકર ઉસકે અંદર મેં હી સકલ નિરાવરણ ઇસ તરહ સે ઉસકા, ક્યોંકિ ઉસકે લક્ષ્ય સે જો પ્રકટ હુઈ હૈ વો ઉસમે અભેદ હોકર અપને કો ઉસ રૂપ જાન ઓર માન રહી હૈ. સમજાનું કાંઈ, પર્યાય એમ જાણે છે કે જે સકળ નિરાવરણ. દેખો અભી જાણે છે લિખા, ઉપર માને છે લિખા, હે ને, એને દોનો હી હૈ કે જે સકળ નિરાવરણ અખંડ એક પ્રત્યક્ષ પ્રતિભાસમય અવિનશ્વર શુદ્ધ પારિણામિક પરમભાવ લક્ષણ નિજ પરમાત્મ દ્રવ્ય તે હું છું. તે આ શુદ્ધ ભાવ, એ શુદ્ધ ભાવ કા એ પૂરા લક્ષણ વર્ણન ક્યાં, વો સકળ નિરાવરણ. આમાં એક કલાકમાં બધું શી રીતે યાદ રાખવું ભગવાન બાપુ. અલૌકિક માર્ગ છે આ તો, એ લૌકિક કે વાત નહીં, અલૌકિક હૈ, અદ્ભુત હૈ. આવી ચીજ બીજે ક્યાંય નથી, કોઈ સંપ્રદાયમાં નથી, શ્વેતાંબરમાં નથી તો પછી બીજે તો ક્યાંથી હોય, સાંભળવું મુશ્કેલ પડે. દેખો જે જો કાનજી સ્વામી થે સ્થાનકવાસી મેં જન્મે થે ઓર બચપન સે ઉનકો તો સારે ભગત હી કહેતે થે અને ભલે દુકાન પે બેઠતે થે પરંતુ એ શાસ્ત્ર વાચન હી કરતે રહેતે થે ઓર ઉન્હોને શાદી કા ભી ઇનકાર કરકે તો વહાં કી મુનિ દીક્ષા લી થી ઓર ઉન્હોને પૂરે શ્વેતાંબર સંપ્રદાય કે સ્થાનકવાસી સંપ્રદાય કે સારે હી ગ્રંથ જિસકો કહેંગે હજારો પઢે થે ઇનકો કિતના તો યાદ હૈ ઉનકો વહાં કા કંઠસ્થ થે કિતને હી ઓર જબ સમયસાર હાથ મેં આયા ફિર મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક પઢા તો ઉનકો બાત યે ખ્યાલ મેં કે નહીં યે સચ્ચા માર્ગ હૈ. ફિર ઉન્હોને વો મુંપટ્ટી લગાતે થે પહેલે વો તો દિગંબર પ્રતિમા કે સામને વો છોડ કર ઘોષિત કરી દે મેં અભી આજ સે દિગંબર હું કરકે તો વહાં કે મુનિ થે પણ યહાં વો અપને કો શ્રાવક કહેલાતે થે. યહાં કોઈ મહારાજા મુનિ નહીં થે વો. क्योंकि उनको पता था कि कपड़े सहित कोई मुनि नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उनको मालूम है कौन से ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा है, कहाँ कौन सी बातें गलत है। एक बार तो उन्होंने वो कलशामृत में पूरी लिस्ट बताई थी कि कौन कौन सी बातें वहाँ गलत है, क्या है वगैरह। यानी ऐसा कोई पक्ष लेकर, ऐसा नहीं है कि ये सच्चा ये झूठा, ऐसा कोई नहीं। जो बात सच्चा है वो सत्य है। वहाँ रहते हुए भी लोग कहते थे आप संप्रदाय मत चेंज करो, आपको जो समयसार पढ़ना है ये सब शास्त्र बताने हैं यही बताओ चलेगा हमको। कहते नहीं ऐसा झूठा मुझे नहीं, मेरे से नहीं होगा। कि अंतरंग में एक सत्य मानो और बाहर में कुछ मैं उसी पंथ को फॉलो करूँ, ये बात नहीं हो सकती। श्वेतांबर ने स्थानकवासी से भी विरोध था और यहाँ दिगंबर बने तो दिगंबरों ने भी बहुत विरोध किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये कौन आए बाहर के और हमको हमारे ग्रंथ समझा रहे हैं। इसलिए यहाँ भी डटकर विरोध हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मुनि का क्या स्वरूप होता है और ये क्या धर्म सच्चा क्या है इतनी स्पष्टता से बात की है, तो विरोध भी बहुत हुआ उनको। परंतु पुण्य का प्रभाव कहो या उनके कारण तो लाखों लाखों लोग सत्य जानना शुरू करे। दिगंबर मूल दिगंबरों को भी जिनको मालूम नहीं था वो भी उनके फॉलोअर हो गए और कितने स्थानकवासी वो भी टर्न होकर दिगंबर बन गए। ये क्या हम जैन तो है ना, जैनियों में ऐसे दो फाटे हो गए और फिर मूल में आकर मिले, उसमें क्या उसमें आश्चर्य क्या है। वो तो कहेंगे कोई ऐसा पुण्य का संयोग हो गया कि मूल मार्ग तो मिल गया। जैसे हम कहते हैं कोई नदी है और प्रवाह में कोई दूसरी धारा हो जाती है उसको और फिर वो मूल नदी में आके मिले तो उसमें क्या है, अच्छी बात है ना। यहाँ जो सत्य अगर समझते हैं और वो मूल बात को स्वीकार करते हैं तो वो उनके लिए कल्याणकारी है। केवल ज्ञान परद्रव्य कहे हाँ, ये लिया ना जो क्षायिक भाव को भी यहाँ पर पर्याय है, इसलिए परद्रव्य कहा। केम के एक समय रहे छे अने प्रभु तो त्रिकाण छे, प्रभु ने भगवान आत्मा जिसको हम स्वभाव भाव कहेंगे, वर्तमान 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 त्रिकाण ध्रुव छे। वर्तमान वर्तमान विद्यमान हर समय विद्यमान रहता है, वो त्रिकाण रहता है, ध्रुव है। ए त्रिकाणी ने यहाँ शुद्ध भाव कहो, ए शुद्ध भावनी अपेक्षा थी वर्तमान पर्याय जे साथे छे ए उपादेय नथी। अभी अपेक्षा लगाइयो, पर्याय बिना को तो द्रव्य होगा नहीं और ये करने वाली लक्ष्य करने वाली पर्याय है। परंतु कहे क्या रहे, शुद्ध भाव की अपेक्षा से एक बार जो त्रिकाली द्रव्य पूरा अखंड हो जो अनंत गुणों का पिंड और उसके हर समय उस पर्याय 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 हो रही है, तो कहते पर्याय जे साथे छे ये उपादेय नथी, यानी उसका आदरणीय नहीं है, लक्ष्य करने लायक नहीं है। लक्ष्य तो अपने त्रिकाली का करना है। ये संवर निचराने मोक्ष उपादेय ने, देखो मोक्ष जैसा सर्वोत्कृष्ट कार्य है फिर भी वो एक समय की पर्याय है, इसलिए उसका लक्ष्य नहीं करते हुए वो किसके आश्रय से हुआ है उस त्रिकाली की बात करें। केम के एना आश्रय तो विकल्प उत्पन्न थाय छे, अंतरना आश्रय थी मोक्ष मार्ग उत्पन्न थयो। अंतरना ने स्वभाव ने पण मोक्ष मार्गनी पर्याय नो आश्रय करे तो राग उत्पन्न थाय छे। पर्यायना आश्रय थी तो राग थाय छे। त्रिकाली भगवान एक समय मा पूर्णानंद नो नाथ, आहा समझानु कहें, यानी एक समय में ने प्रत्येक समय में, प्रत्येक समय में परिपूर्ण है वो और उसके अनंत गुण वहाँ विद्यमान है और वो जो परिणमन उसका पर्याय जो चल रहा है। और अभी तक क्या है, पर का लक्ष्य करने से वो तो पर्याय में तो विकार ही हो रहे थे, वो तो आश्रय बंध चल रहा था। अभी वो पर्याय स्व सन्मुख है ना, वो त्रिकाली के सन्मुख हो गए तो उसमें संवर निजर और कालांतर से मोक्ष होगा, परंतु उसके आश्रय से नहीं होगा। जो जो पर्याय अपना लक्ष्य करती है, इसलिए यहाँ त्रिकाली स्वभाव भाव जिसको आत्मा कहा, शुद्ध आत्मा कहा, और एक बाजू ये पर्याय, इसलिए पर्याय का लक्ष्य करने लायक नहीं है, इसलिए उसका लक्ष्य छुड़ाया, उसका आदर छुड़ाया है, इसलिए उसको है ये कहा। पर टीका में उसको ये उपादेय नहीं ऐसा कह दिया। क्रमबद्ध में आयु छे ने, जे समय मोक्ष थाय छे ए समय ज थाय छे। देखो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है अनादि से अनंत काल तक की। ऐसा नहीं कि वो निमित्त आया इसलिए थोड़ा कुछ बदल गया, दूसरा निमित्त आता तो कुछ अलग हो जाता, हम कहते हैं वो अरे जाके जाते जाते एक्सीडेंट में मर गया, अरे अभी नहीं जाता बाहर तो अच्छा था, कोई कहते नहीं जाता तो भी उसका मरण आया तो घर में मरता, ऐसा नहीं है। जिस ठिकाने जिस क्षेत्र में जिस निमित्त से जिस विधि से जैसा जो कुछ होना है वो सब कुछ निश्चित है, जन्म से मरण तक सब कुछ। ऐसा नहीं है ये, इस उनका ये प्रश्न है, ऐसा नहीं है सब कुछ निश्चित है। सब कुछ निश्चित होता तो केवल ज्ञान ही नहीं होता है ना, ऐसा कहना है ना आपको? हाँ सब निश्चित है तो केवल ज्ञान, हाँ ऐसा कहना है, केवल ज्ञान होगा नहीं उस जीव को ऐसा? हाँ क्यों नहीं होगा? थोड़ा चेंज यानी कि इसमें चेंज होगा तो क्या? देखो देखो जीवों को ये पता नहीं ना, ये प्रश्न ऐसा ही लोगों को लगता है, सब कुछ निश्चित है तो हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, ऐसा ही कहना है ना? तो यहाँ कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है ये नक्की करना यही पुरुषार्थ है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य है, द्रव्य में अनंत गुण है और वो स्वयं के कारण परिणमते हैं हर समय। तो हमने देखा ना जैसे ज्ञान की हर समय की पर्याय सुनिश्चित है, वो क्या जानता है वो भी सुनिश्चित है, प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि अनंत पर्याय सुनिश्चित है। और ये सुनिश्चितता जो है, नहीं तो अभी हम कहते हैं ना सर्वज्ञ भगवान किसको कहते हैं, जो तीन काल तीन लोक का सब कुछ जानते हैं। सुनिश्चित है तब जानते कि सुनिश्चित नहीं है वो जानते हैं, केवल ज्ञान सिद्ध ही नहीं होता अगर सुनिश्चित नहीं होता तो। यानी केवल ज्ञान ने जिस खाली केवल जो हो गया उसको जाना, अभी होने वाला उसमें हो सकता है उसमें कोई चेंज हो सकता है, क्या ऐसा केवल ज्ञान है? हम जब सर्वज्ञ भगवान की ही सिद्धि नहीं होगी अगर क्रमबद्ध नहीं मानेंगे तो। सर्वज्ञ भगवान है और वो तीन काल तीन लोक के सभी सब अलोक सहित सभी द्रव्यों की सभी आने वाली पर्यायों को भी निश्चित रूप से जान रहे कि इस समय ये बात होने वाली है, तभी तो उसको हम केवल ज्ञान कहेंगे। यानी वो पदार्थ में वो पर्याय क्रमबद्ध है, वो क्रम नियमित है, वो निश्चित है, तभी तो केवल ज्ञानी जानेंगे उसको। अगर निश्चित नहीं होते तो केवल ज्ञानी कैसे जानते? और ये निश्चित होते हैं और केवल ज्ञानी ऐसा जानते हैं, वो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से निश्चित करना पड़ेगा, पर्याय की ओर देख कर नहीं। अरे एक्सीडेंट हुआ ये सुनिश्चित था, ये हुआ ये सुनिश्चित था, हमको यहाँ जाना था और हम यहाँ गए क्योंकि केवली ने देखा था तो हमको यहाँ जाना पड़ा, ऐसी बात नहीं है। ये सुनिश्चितता हमें, हम भी सर्वज्ञ स्वभावी है, तो जब तक अपने स्वभाव की सन्मुखता नहीं होती तब तक ये क्रमबद्ध को हमने सही नहीं समझा। यानी स्वभाव की सन्मुखता होना यही पुरुषार्थ है, दूसरी भाषा में केवल ज्ञान का निर्णय करना यही पुरुषार्थ है, तीसरी भाषा में क्रमबद्ध का निर्णय करना यही पुरुषार्थ, तीनों एक समय में हो जाते हैं। जिस समय आत्मा का अनुभव होता है उसी समय हमने केवली को सही जाना, उसी समय में हमने क्रमबद्ध का निश्चय किया, यही पुरुषार्थ है और दूसरा कोई पुरुषार्थ नहीं है। ऐसा जो कहता है उसका भी काल बाकी है, उसका भी लंबा है। हाँ क्योंकि वो मानता है इसलिए हमें तो सत्य मानना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है मानने दो, जब उसका काल आने वाला है तो उसको वो सही भाषित हो जाएगा, क्योंकि अभी तो सही भाषित नहीं, सत्य उपदेश भी उसका झूठा लग रहा है। जब उसका होने का क्रमबद्ध का नंबर आ जाएगा तो उसको सही भाषित भी हो जाएगा। ऐसा नहीं हो तो कर्म से कुछ नहीं होता है। ये मूल में सब ज्ञान में और श्रद्धा में लेने की बात है। अब यहीं रुकेंगे।
जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नं सदा देत हो।
नमो यंतानं नमो।
शुक्राणाम।